सवाल नंबर एक, दरख्त, झाड़, घास और हर किस्म की उगने वाली चीज़ यानी नबातात में जो रूह मौजूद होती है उसका क्या नाम है? क्या नबातात में एक ही रूह होती है या ज़्यादा? ये इनका सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है। और जैसा कि मैंने अभी अभी गुजारिश की कि ये रूह से मुतालिक मौजू है, आप जानते हैं कि इस्माइली मज़हब में रूह का जो मौजू है उसको क्या अहमियत है। इसलिए कि हम रूहशनास हैं, अहली बातिन हैं, और इसलिए कि रसूल अकरम ने और मौला अली ने रूह की शिनाख्त यानी मारिफत को बहुत अहमियत दी है। इसलिए रूह की पहचान से मुतालिक ये जो सवालात हैं और ये सवालात मिलकर जो मौजू बनाते हैं ये बड़ा अच्छा है। तो सवाल इनका ये है कि उगने वाली चीज़ों में एक रूह है या एक से ज़्यादा है, और उस रूह का क्या नाम है? इसका जवाब है कि उगने वाली चीज़ों में एक लिहाज से एक ही रूह है, उसका नाम रूह ही नबाती है। उगने वाली जितनी चीज़ें हैं, खा कोई दरख्त है या झाड़ हैं, झाड़ जो दरख्त की हद में नहीं हो उसको झाड़ कहते हैं, या कोई घास है और घास में बहुत सी किस्में हैं, जड़ी बूटियां हैं और तरकारियां हैं, फसलें हैं, ये सब, तो इनका नाम नबातात है। तो नबातात के अंदर जो रूह है उसको रूह ही नबाती कहा जाता है। तो एक लिहाज से इन चीज़ों की सिर्फ एक ही रूह है जो नशो नुमा देने वाली रूह है, इसको रूह नामिया भी कहा जाता है, यानी नशो नुमा पाने वाली रूह या कि नशो नुमा दिलाने वाली रूह। और दूसरे लिहाज से नबातात के अंदर दो रूहें हैं, तो दूसरी रूह कौन सी है उसका जिक्र आगे चलकर आएगा। वो खामोश रूह है, वो सोई हुई रूह है, जैसे किसी पत्थर में एक बेदार रूह नहीं होती है बल्कि सोई हुई रूह होती है। उसको साइंसदान किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, जैसे एटम है वगैरह, और आगे चलकर भी कितनी मालूमात होंगी जो डेड सोल है उसके मुतालिक। तो बहरहाल एक एतबार से नबातात के अंदर एक ही रूह है, और दूसरे एतबार से अगर उस खामोश रूह को जो सोई हुई है उसको भी काउंट करे तो उसके अंदर दो रूहें होती हैं। इसी के साथ इनका सवाल नंबर एक ख़त्म हो जाता है। इन्होंने पूछा, जानवर जो हैवान सामित हैं, यानी वैसे तो हैवान जो अरबी लफ्ज़ है हई हयात को कहते हैं, जिंदा का नाम है, तो इस हैवान के इस नाम में ओरिजिनली या लिटरली इंसान भी शामिल है। तो बाज़ दफ़ा जो फ़िलासफ़ी है वो इंसान को भी जानदार कहते हैं, जानदार का मतलब जीव रखने वाला, लेकिन आम इस्तेमाल में जानदार या कि जानवर जो है उन मखलूक़ात को कहा जाता है जिनके अंदर जान तो है लेकिन क़ुव्वत नातिका यानी बोलने की सलाहियत नहीं है, तो आम तौर पर उनको जानवर कहा जाता है या हैवान कहा जाता है। इसमें इस फ़र्क के लिए फ़लसफ़ियों ने क्या रखा, हैवान सामित खामोश हैवान, और दूसरे को हैवान नातिक बोलने वाला हैवान। तो बोलने वाला हैवान जिंदा और ज़िंदगी के सेंस में इंसान है, और जो खामोश हैवान है वो जानवर है। तो यहाँ सवाल असल में जानवर से मुतालिक हैं। पूछा गया है कि जानवर जो हैवान सामित है इनमें कितनी रूहें काम करती हैं,
तो जिस तरह अभी नबातात के बारे में पूछा गया था कि उसके अंदर कितनी रूहें हैं, इसी तरह जानवर के बारे में सवाल है कि जानवर में कितनी रूहें काम करती हैं और इनके मराकिस कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि रूह का कोई सेंटर होता है, वो उस रूह में, उस सेंटर में रहकर काम करती है। तो यहाँ रूह के, इन रूहों के मराकिस या कि सेंटर के बारे में भी सवाल है और उनके नाम के बारे में भी सवाल है। तो अर्ज है कि जानवरों में एक लिहाज से दो रूहें काम करती हैं। एक वो है जो अभी अभी उसका जिक्र हुआ, रूही नबाती, और एक जानवर की अपनी रूह है, मखसूस रूह, उसका नाम रूह हैवानी है। और अगर उस रूह को भी काउंट करें जो सोई हुई है, तो इसके साथ तीन रूहें होती हैं। अगर हम उसको शुमार इसलिए नहीं करते हैं कि बहुत से लोगों ने इसको शुमार नहीं किया है, तो इस सूरत में जानवर के अंदर दो रूहें हैं। कोई भी जानवर, हाथी हो, मच्छर हो, चींटी हो, या कोई परिंदा हो, तो कोई भी जानवर जिसमें जीव है, जिसमें जान है, तो उसके अंदर दो रूहें हैं। इन दोनों में से अलग अलग नाम, एक तो रूही नबाती जो घास वाली या दरख्त वाली रूह थी वो भी इसमें है, और एक रूह हैवानी जो जानवर की अपनी मखसूस रूह है वो है। अब इनके मराकिस यानी वर्क सेंटर कहाँ है, तो उसके लिए अर्ज ये है कि जो रूही नबाती है उसका सेंटर जिगर में, कलीजे में है, और जो रूह हैवानी है उसका सेंटर दिल में। सेंटर का तसव्वुर ऐसा है कि कोई इदारा है या कोई चीज, तो उसका मखसूस मकाम होता है, लेकिन उसका दायरा कार जो है वो काफ़ी वसी होता है। चुनांचि जानदार के अंदर जो रूह नबाती है जिसका सेंटर जिगर है, कलीजा, तो वो सारे जिस्म में काम करती है, और इसी तरह रूह हैवानी का सेंटर दिल है, जानवर का दिल। तो दिल में अपने सेंटर को कायम रखते हुए रूह हैवानी जानवर के तमाम जिस्म में काम करती है, और जो वो डेड सोल है या जो मुर्दा रूह है, मरी हुई या सोई हुई या जामिद, तो वो तो तमाम जिस्म में फैली हुई है, उसका कोई सेंटर नहीं है। और मिसाल के तौर पर इंसान के जिस्म में कोई हिस्सा ऐसा हो कि जहाँ पर खालिज गिरा हो या कोई फोड़ा निकला हो, वो जगह खुश्क हो, तो उस मकाम पर वो डेड सोल नुमायान हो जाती है, पता चलता है कि उसमें वही रूह है जो पत्थर में है, जो बेहिस है, उसमें नबातात की तरह नशोनुमाई की सलाहियत नहीं है, उसमें रूह हैवान की तरह हिस हरकत की कुव्वत नहीं है, लेकिन वो खामोश है और सोई हुई है। तो ये है सवाल नंबर दो का जवाब कि हैवान के अंदर एक लिहाज से दो रूहें हैं और दूसरे लिहाज से तीन रूहें हैं जिन का जिक्र हुआ और जिनके मरकज का भी बयान हुआ। इसी के साथ नंबर दो सवाल खत्म हो जाता है। अपनी नौयत की निराली मजलिस है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह हम बहुत आराम आराम से इससे डील करेंगे। सवाल है नंबर तीन, जाहिर है कि एक आम इंसान ऐसा नहीं है जैसे इंसानी कामिल हैं, और इंसानी कामिल पैगंबर का नाम है, इमाम का, और इमाम से करीब यानी पीर बुजुर्ग वगैरह जो हैं वो भी इंसानी कामिल से करीब हैं या कि इंसानी कामिल के साथ शुमार हैं। इंसानी कामिल की जो इस्तिलाह है ये ऐसी है कि ये वाहिद इस्तिलाह पैगंबर के और इमाम के और इसके निचले दर्जात को कवर करती है ये इस्तिलाह, इसलिए हमने इस इस्तिलाह को इस्तेमाल किया है। सवाल है कि एक आम इंसान ऐसा नहीं है जैसे इंसानी कामिल, आया इसमें रूह की पाकीजगी का फर्क है या तादाद का या दोनों का? मैं समझता हूं कि आपने इस सवाल को कैच किया। ये पूछता है कि जिस तरह एक आम इंसान इंसानी कामिल के औसाफ को नहीं पहुंचता है, क्योंकि आम इंसान इंसानी कामिल से कमतर है, या कहना चाहिए कि ये तो नाकिस है और वो कामिल है, तो इस फर्क की क्या वजह है रूह के एतबार से? आया इंसानी कामिल में कोई आला दर्जे की रूह है, या जो भी रूह है उसमें ज्यादा पाकिजगी है, तो क्या वजह है? या ये है कि रूह भी जो है वो भी पाक व पाकिजा है, और इसके अलावा इंसानी कामिल में एक जाहिद रूह है, इसकी वजाहत चाहिए। नीज दोनों दर्जों में रूहों के नाम और मराकिस सीकार बताइए। तो इंसान के अंदर जो हैवान से जानवर से ऊपर है इसका दर्जा, तीन रूहें हैं एक लिहाज से, और अगर खामोश और खाबीदा रूह को भी शुमार करें तो चार, और अगर खामोश रूह को शुमार नहीं करते हैं तो उसका जिक्र आपने सुना, तो चलिए तीन है। एक वो जो घास पात वाली है जिसको रूही नबाती कहा जाता है, और दूसरी रूह वो जो जानवरों में हुआ करती है, और तीसरी रूह इंसान की अपनी मखसूस रूह जिसका नाम रूही इंसानी भी है, रूह नातिका भी है, और कुछ लोग उसको नफ्सी नातिका भी कहते हैं। और इसकी खासियत यह है कि वो बोलने वाली रूह है, और इंसान और हैवान के दरमियान जितना कुछ फर्क है वो इस रूही नातिका की वजह से है, बोलने वाली रूह की वजह से है ये फर्क है, क्योंकि इसमें अक्ल है, शुऊर है, तमीज़ है, और दीगर इंसानी औसाफ जमा हैं, तो इसी बोलने वाली रूह की वजह से। अब इस फर्क का कुछ जिक्र कीजिए कि एक कामिल इंसान जो पैगंबर है या इमाम है मैं, और एक आम इंसान में क्या फर्क है, क्यों फर्क है? तो अर्ज है कि यह फर्क इसलिए है कि इंसानी कामिल के अंदर एक जाहिद रूह है, उसका नाम रूह कुदसी है, जिसे होली स्पिरिट कहते हैं। यह है इस रूह कुदसी की मौजूदगी की बदौलत जो जैली रूहें हैं उन पर भी रोशनी पड़ती है। मसलन एक आम इंसान में जो इंसानी रूह है और पैगंबर में जो आम इंसानी रूह है उसमें फर्क है, क्यों? इसलिए कि पैगंबर में रूह कुदसी है जिसने इस इंसानी रूह को महज़ब बनाया है। सिर्फ यही नहीं कि पैगंबर और इमाम में जो रूह हैवानी है वो भी महज़ब हो गई है। वजह जाहिर है कि उन हजरात में रूह कुदसी है, इस रूह कुदसी की रोशनी में उनके अंदर जो जैली और जिमनी रूहें हैं वो महज़ब हो चुकी हैं, वो रोशन हो चुकी हैं, उनको अदब मिला है, तहजीब मिली है, तरबियत दी गई है, और वो रूहें परवरिश पाई गई हैं। इसकी मिसाल, आम मिसाल ये है कि जो बकरी में, ऊंट में, गाय में और देगर हलाल और हराम जानवरों में जो रूह हैवानी है वही रूह इंसान में भी है, लेकिन इंसान के अंदर जो रूह इंसानी है इसने इस हैवानी रूह को महज़ब बनाया। और मजीद मिसाल चाहिए? आपने देखा होगा कहीं कुछ कुत्तों के सामने हड्डियां होती हैं तो वो रूह हैवानी के अंदर जो ख्वाहिशात मेलानात हैं उनके तहत आपस में कुत्ते लड़ पड़ते हैं। इसी तरह कहीं दूसरे जानवरों को आप घास डालते हैं तो वो भी इस तरह से घास नहीं खाते हैं जिस तरह इंसान खुराक खाता है। हालांकि इंसान ऐसा नहीं करता है और बहुत ही अदब से खाता है और जो उसके हम तबक हैं उनको देखता है और बहुत ही शर्म से और इज्जत से और हया से खाता है। और हालांकि खाने का जो तकाजा है वो अकल के लिए नहीं है और जो आला रूह है उसके लिए नहीं है, हमारे अंदर जो नफ्स हैवानी है उसके लिए है। लेकिन नफ्स हैवानी जो हमारे अंदर है वो इस तरह से आज़ाद नहीं है जिस तरह जानवरों में, क्योंकि इसके ऊपर जो रूह है उसने इसको कंट्रोल किया है। जब आम हद में ये सबूत मिला तो इंसान कामिल में जो रूह कुदसी है उसने उसकी हस्ती के अंदर जो रूह इंसानी है उसको भी कंट्रोल किया हुआ है और जो रूह हैवानी है उसको भी कंट्रोल किया हुआ है। तो ये फर्क है एक आम इंसान और इंसानी कामिल में, ये फर्क है कि इंसानी कामिल में एक जायद या कि इजाफी रूह है, एक्स्ट्रा रूह है, उसका नाम रूह कुदसी है। और मराकिज के सिलसिले में यह है कि जानवर हो या इंसान, उसके जिगर के अंदर रूही नबाती का मरकज है। कामिल इंसान हो या नाकिस इंसान, बस यही उसूल है कि जो रूही नबाती है इंसान कामिल में भी और आम इंसान में भी जिगर के अंदर उसका सेंटर है, और जो रूह हैवानी है हाँ वो जानवर में हो या एक आम इंसान में हो या इंसान कामिल में हो तो उसका सेंटर दिल है। और इंसान की इंसानी रूह का जो सेंटर है वो पेशानी में है। अब सवाल रूह कुदसी के बारे में है कि रूह कुदसी जो पैगंबर और इमाम में एक इजाफी रूह है उसका मरकज कहाँ है? उसका मरकज इंसानी रूह के मरकज के ऊपर है। मुझे यहाँ एक और वजाहत की इजाजत हो, ये कि एक लिहाज से तीन चार इमारतें हैं और ग्राउंड फ्लोर इसमें रूही नबाती है, फर्स्ट फ्लोर रूह हैवानी है, सेकंड जो है और रूही इंसानी है, थर्ड जो है वो रूही कुदसी है। या इस मतलब को यूं अदा कीजिए कि रूही नबाती के ऊपर रूह हैवानी कायम है, रूह हैवानी के ऊपर रूह इंसानी कायम है, रूह इंसानी के ऊपर रूह कुदसी जो पाक रूह है वो कायम। तो रूह कुदसी लिटरल सेंस में पाक रूह, इसका इशारा है कि इसमें बहुत ही पाकीजगी की ज़रूरत है और इस रूह से जो करीब होना चाहे यानी इमाम की रूह से तो उसको हर लिहाज से नाफरमानियों से आलाइशों से पाक रहने की ज़रूरत है, तभी तो वो रूह कुदसी इसको एक्सेप्ट करेगी, कबूल करेगी। इसी के साथ सवाल नंबर तीन खत्म हो जाता है। सवाल नंबर चार है, क्या इंसानी रूह और दूसरी तमाम रूहें ज़रात और अज्जा पर मुश्तमिल हैं या इनमें हर रूह ऐसी इबादत और इकाई की तरह है कि उसका कोई तज़िया नहीं हो सकता? बहुत दिलचस्प और बहुत ही मुफीद सवाल है।
अब तक जितनी रूहों का जिक्र हुआ इनमें से हर रूह की हस्ती एग्जिस्टेंस कैसी है, क्या उसके अंदर बहुत सारी इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, जर्रात हैं, अज्जा हैं, या इनमें से हर रूह कोई एक ठोस चीज है, एक ऐसी वहदत की तरह है और एक ऐसी इकाई की तरह है कि उसका जुज जुज नहीं हो सकता है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसका तज्जिया नहीं होता है, तो क्या मामला है? जवाब अर्ज है कि इनमें से हर रूह यानी जिन रूहों का हमने अब तक जिक्र किया, हा वो रूह कुदसी हो, रूह इंसानी हो, रूह हैवानी हो, रूह नबाती हो, इनमें से हर एक जर्रात पर मुश्तमिल है, यानी उसके जर्रात हैं। जब आप रूह के फलसफे को पढ़ेंगे तो आपको वो फलसफा ये बताएगा कि रूह जो है वो नाकाबिल तकसीम है, उसका एक अलग मकाम है। वो बात भी सही है लेकिन
एक लिहाज से रूह के टुकड़े टुकड़े हैं, जर्रे जर्रे हैं। क्यों? इसलिए अगर रूह के जर्रात नहीं होते, टुकड़े नहीं होते, तो हाथी को जितनी रूह देनी चाहिए वही रूह मच्छर को भी देनी होती। ये तो एक वर्णन हो गया। मच्छर को उसकी हस्ती के मुताबिक रूह मिलनी चाहिए, हाथी को उसके वजूद के मुताबिक रूह मिलनी चाहिए, एक ये। और दूसरी बात, उसका जिक्र आगे आएगा, आप किसी को ब्लड देते हैं, ब्लड खून देते हैं और खून का हत्या देते हैं, तो उस वक्त क्या आपकी जो हैवानी रूह है वो तकसीम नहीं होती है? और ब्लड की जो मकदार आप देते हैं, जो क्वांटिटी आप यानी सेक्रीफाइस करते हैं, क्या उसमें रूह हैवानी की ज़रूरत नहीं है? और अगर रूह हैवानी के ज़रूरत हैं तो फिर आप में भी रूह है या नहीं है? इससे जाहिर है कि रूह डिवाइड हो गई। डॉक्टर और साइंसदान मानेंगे और मानते हैं कि रूह हैवानी और रूह नबाती के जो हैं वो टुकड़े टुकड़े हैं। अच्छा, आपने वो गार्डनिंग का काम नहीं किया होगा, ये आपने कोई गुलाब का गुलाब की कलम नहीं लगाई होगी या कोई और दरख्त, या आप दरख्त से एक शाख को काटते हैं और ज़मीन में उसको लगाते हैं? तो आप ही बताइए कि दरख्त की सारी जो उगने वाली रूह थी वो कहाँ गई, दरख्त में है या उस कलम में? तो उधर भी है, इधर भी है। आप एक लंबी शाख के 10 टुकड़े करेंगे तो उन 10 मकाम पर वो जो उगने वाली रूह है मौजूद होगी। आप ज़िंदगी में 100 आदमियों को या 20 को ब्लड दे देंगे तो उन सब में आपकी रूह हैवानी जो है वो जाएगी, मगर रूह इंसानी नहीं जाएगी। तो इससे जाहिर है कि आप जो रूह हैं वो ज़र्रात पर मुश्तमिल है। इसमें तो मैंने सिर्फ रूह नबाती और रूह हैवानी की मिसाल दी, और रूह इंसानी के ज़र्रात किस तरह हैं उसका मैंने जिक्र नहीं किया। तो बहरहाल रूह इंसानी के भी ज़र्रात हैं, इसी तरह जिस तरह आप रूह नबाती के ज़र्रात हैं, अज्जा हैं, और रूह हैवानी के ज़र्रात हैं, यहाँ तक कि रूह कुदसी के भी ज़र्रात हैं। अभी मुझे इसमें दिलचस्पी होगी कि मैं आपको बयान करूँ। मिसाल के तौर पर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को रूह कुदसी आई, सपोज़, तो जब आई तो वो रूह कुदसी एक इकाई की तरह नहीं आई, फरिश्ते, मलाइक, अरवा, अंबिया, अवलिया और खुद कुरान की रूह, बहुत सारी जिंदा हकीकतें आन हजरत में आ गए। इन तमाम के मजमूए का नाम, इन तमाम चीज़ों की यूनिटी का नाम रूह कुदसी, इन तमाम चीज़ों की वहदत का नाम, सालिमियत का नाम रूह कुदसी। तो रूह कुदसी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं थी। मुझे यहाँ पर एक और बात कहने दीजिए। पैगम्बर अकरम ने इरशाद फरमाया है कि खुदाई हकीम ने इस कायनात को, अपने दीन को इस कायनात के मुआफिक बनाया, यानी जैसी ये कायनात है, जैसी ये मखलूकात है, इस तरह उसने अपने दीन को बनाया। क्यों? इसलिए कि इस कायनात को देख के दीन की मिसाल ली जाए और दीन से उसकी यूनिटी की मिसाल ली जाए। तो मतलब ये है कि दीन जिस चीज़ का नाम है वो एक यूनिटी है, उसके अंदर बहुत सारी इकाइयां हैं। इसी तरह रूह कुदसी एक नाम है और उसके अंदर बहुत सारी रूहें हैं, सब फरिश्तों की रूहें हैं और सब मोमिनीन की रूहें हैं, बहुत सारी हकीकतें हैं। तो इससे जाहिर है कि तमाम रूहें जो हैं वो अज्जा की सूरत में। एक और एग्जांपल आपको बताएं, जहां दीन के बड़े फलसफे में नफ्सी कुली का जिक्र आता है, यूनिवर्सल सोल का जिक्र आता है, तो उस वक्त इंसान को नफ्सी जुजवी करार दिया जाता है। इंसानों को उस नफ्सी कुली के अज्जा शुमार किया जाता है और नफ्सी कुल को कुल और मजमुआ बताया जाता है। इससे भी जाहिर है कि जितनी रूहें हैं, बड़ी छोटी, وہ اجزاء پر مشتمل ہیں، ذرات پر مبنی ہیں، اور وہ جو ہیں جو اصل ہیں وہ ایک یونٹی ہے یا مجموعہ ہے۔
تو اسی کے ساتھ سوال نمبر چار ختم ہو جاتا ہے۔
امام میں جو عظیم روح موجود ہوتی ہے، کیا وہی روح نور کہلاتی ہے یا نور اس کے علاوہ ہوتا ہے؟ ایسی عظیم الشان روح کا سرچشمہ کہاں ہے؟
جواب عرض ہے کہ پیغمبر اور امام میں جو عظیم روح موجود ہوتی ہے وہی نور بھی ہے۔ اور یاد رہے کہ ہر روح نور نہیں ہے، جو عظیم روح ہے، جو سب سے بڑی روح ہے، صرف اسی پر نور کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ اس میں روشنی ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی روحیں ہیں وہ از خود اپنے آپ سے نور نہیں کہلا سکتی ہیں۔ ہاں اگر کسی خوش نصیب روح پر اس بڑی روح کی روشنی پڑ رہی ہے تو یہ بات الگ ہے، نہیں تو اپنے آپ کوئی بھی ذیلی روح نور نہیں کہلا سکتی ہے۔ نور صرف ایک روح ہے جو پیغمبر اور امام کی روح ہے۔ اور دوسرا سوال اسی میں یہ تھا کہ اس ایسی عظیم الشان روح کا سرچشمہ کہاں ہے، یعنی یہ روح کہاں سے آتی ہے؟ اس کا جواب یوں ہے کہ پیغمبر سے اگلی جو ہستی ہوتی ہے، آگے جو امام ہوتا ہے یا پیغمبر ہوتا ہے، وہ اس ہونے والے پیغمبر کی روح کے لیے سرچشمے کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور جو سابق امام ہے وہ لاحق امام کے لیے نور کے سرچشمے کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے، میں اس کا خلاصہ کروں گا۔ قرآن میں جو ارشاد ہے، جو خدا فرماتا ہے کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، آدم کے قصے میں خداوند عالم فرشتوں سے اعلان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ جب میں اس آدم کو درست کروں اور اپنی روح اس میں پھونکوں تو تب تم سجدے میں گر پڑنا، پہلے نہیں۔ اس سے یوں لگتا ہے جیسے خدا نے بذات خود اور اپنی ہستی سے ایسی روح کو آدم میں پھونکی، مگر تاویل اور حقیقت میں یہ بات نہیں ہے۔ آدم سے پہلے جو امام تھے یا جو پیغمبر تھے، اس سے جو نور منتقل ہوا، تو اسی کا نام خدا کی طرف سے روح پھونکنا ہے۔ آپ کو آگے چل کر اس راز کا انکشاف ہو جائے گا کہ جو فعل ہے، جو کام ہے، جو ایکشن ہے، وہ خدا کی ذات سے منسوب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی بادشاہی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو خدا نے کسی اور طرح سے آدم میں روح نہیں پھونکی، بلکہ جو اگلی ہستی تھی اسی میں سے روح یا کہ نور منتقل ہو گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ میری عادت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور اگر مان لیا جائے کہ آدم کے اندر خدا نے جو روح پھونکی تھی، اس کا طریقہ دوسرے انبیاء اور اماموں سے الگ تھلگ تھا، تو پھر خدا کی دو عادتیں ہو گئیں، ایک وہ اس نے کہ عرش سے آدم میں روح پھونکی، ایک یہ کہ اس میں خدا نے اگلے امام سے دوسرے امام میں روح پھونکی۔ تو خدا کی دو عادتیں ہو گئی۔ جب دو عادتیں ہو گئی تو یہ جو فرماتا ہے کہ میری عادت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو یا یہ ایک حکم فضول ہو گیا کہ چونکہ وہاں عادتیں دو ہیں، ایک پہلی عادت جس میں خدا نے براہ راست اور ڈائریکٹ اشیالہ سے آدم میں روح پھونکی، دوسری خدا کی وہ عادت جو ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر میں روح تبدیل ہو گئی، نور تبدیل ہو گئی، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ تو خدا کا روح پھونکنا یہ ہے کہ جو اگلا پیغمبر تھا یا جو امام تھا، اس میں سے نور منتقل ہو گیا، تو اس نور منتقل ہونے کا نام روح پھونکنا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو پیغمبر میں اور جو امام میں روح ہے وہ خدا کی روح ہے۔ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے ان سوالات کے سلسلے میں، خدا کی روح بھی صرف منسوب ہے، جس طرح خدا کا فعل خدا سے منسوب ہے، وہ کرتا کوئی اور ہے، لیکن خدا اس فعل کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے۔
और ये राज बाद में बताएंगे कि यानी खुदा कौन है और क्या है, ये सवाल अलग है, फिलहाल हमें इस तरह से बोलने दीजिए। तो इसलिए इस अजीमुशान रूह का सरचश्मा जो है वो अगला इमाम है और अगला पैगंबर है।
सवाल है नंबर 6, आया कुरान की भी कोई अजीम रूह है? अगर कहा जाए कि कुरान की एक मौजजाती रूह है तो सवाल होता है कि वो कहाँ है।
बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत मालूमाती है। इसका जवाब है कि हाँ, कुरान की भी एक अजीम रूह है और वो मौजजाती रूह जब कुरान नाजिल हुआ था तो उस वक्त आन हजरत में थी। हम आपको कुरान से साबित करने की जिम्मेदारी लेते हैं, वक्त फुर्सत हम आपको बताएंगे कि कुरान ओरिजिनली एक रूह की सूरत में नाजिल हुआ था, एक जिंदा और बोलने वाली रूह की शक्ल में कुरान नाजिल हुआ था और उस रूह का नाम रूह कुदसी था। अभी अभी उसका जिक्र हुआ, उसी रूह कुदसी के अंदर कुरान था। बाज़ दफा ऐसी रूह को जिब्राइल भी कहा जाता है, रूहुल अमीन और रूहुल कुदस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक हकीकत के कई कई नाम हुआ करते हैं। बहरहाल कुरान की भी एक जिंदा रूह है और वो रूह सबसे पहले आन हजरत में थी, फिर उसके बाद इमाम में वो रूह मुंतकिल हो गई जिसमें कुरान था। यहां पर एक और नुक्ता की वजाहत की जाए। आपको बहुत से हजरात ये कहते हुए मिलेंगे कि वो कुरान की रूह को मानते हैं और अपनी तहरीरों में रूह के लफ्ज को इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि रूह जिसको इंग्लिश में स्प्रिट कहते हैं, इससे वो हजरात एसेंस को मुराद लेते हैं, मगज को मुराद लेते हैं, यानी ये रूह के आम और बहुत ही आम मानी हैं। आप वो तिब में जाएंगे तो ये लफ्ज आपको वहां भी मिलेगा, तिब में, यूनानी तिब में, और वो किसी चीज के सत को, जोहर को, मगज को और एसेंस को भी रूह कहते हैं। इसलिए किसी को गुमान हो सकता है कि जहां कुरान के अंदर कुरान की रूह का जिक्र है तो इससे कहीं ये मानी और असलियात या मगज ऐसे मानी मुराद न हो, ये बात नहीं है, बल्कि इस रूह से जिंदा रूह मुराद है और वो रूह कुदसी है। क्योंकि सवाल बहुत है, इस वास्ते इसी पर इक्तफा करते हैं। और वो रूह जो है पैगंबर में थी और आन हजरत के बाद इमाम में मुंतकिल हो गई। क्या ये सच है कि खुदा की भी रूह है? अगर है तो वो कहाँ है और किस तरह है? दिलचस्प सवाल है। आपने सुना है इस्लामी लिटरेचर में ईसा रूहुल्लाह, ईसा जो खुदा की रूह थे, ये और दूसरी वो बात जो अभी अभी मैंने बताई कि खुदा ने अपनी रूह आदम में फूंकी। ऐसे इरशादात से पता चलता है कि ये खुदा की रूह है, मगर देखना यह है कि खुदा की रूह कैसी है। क्या ऐसी है जिस तरह इंसान का क़याम उसकी रूह पर है, और रूह न हो तो फिर इंसान मर जाता है, ये बात नहीं है। जमाने में जो हादी बरहक होता है वो कभी पैगंबर होता है और कभी इमाम, वही खुदा की रूह है, वही खुदा की रूह है। ये एक निस्बत है, ये मंसूब है, जिस तरह अभी अभी बात की गई थी कि खुदा कोई फेल नहीं करता है, लेकिन जो इंसानी कामिल करता है वो फेल खुदा से मंसूब हो जाता है। तो इमाम खुदा की रूह है, पैगंबर खुदा की रूह है। फिर मुझे कहने दीजिए कि ईसा रूहुल्लाह कहने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ ईसा ही खुदा की रूह थे। ये कैसी बात होगी कि ईसा को एक ऐसा मर्तबा हासिल हो जो आन हजरत को और हजरत इब्राहिम को, दूसरे बड़े बड़े अंबिया को वो मर्तबा हासिल नहीं हो, यह बात नहीं है। जिस मर्तबे में कोई पैगंबर होता है तो उसी मर्तबे में دوسرے انبیاء بھی ہوتے ہیں اور امام بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات الگ ہے کہ ہر پیغمبر کے نام پر وہی ذکر آیا ہے یا نہیں آیا ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اصول ہم کو بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو درجہ حاصل تھا وہ ضرور ان حضرت کو ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ صرف آدم میں خدا نے روح نہیں پھونکی تھی، روح تو ہر پیغمبر میں خدا کی روح ہوتی ہے اور ہر امام میں خدا کی روح ہوتی ہے. کیونکہ ابھی ہم نے کہا نا کہ یعنی نور اور روح کہنے کا مقصد ایک ہے. جب خدا نے اپنے نور کے بیان میں یہ فرمایا کہ اس کا نور دنیا میں ہے اور کوئی اس کو نہیں بجھاتا ہے، تو اس سے خدا کی روح مراد ہے. جو خدا کا نور ہے وہی خدا کی روح ہے، اور جو خدا کی روح ہے وہی خدا کا نور ہے. تو اس معنی میں، اس سنس میں انسانوں کی طرح نہیں، تو وہ یعنی انسانی کامل خدا کی روح ہے. نمبر 8، کہا جاتا ہے کہ اس کائنات کی ایک محیط روح ہے. اس کا کیا نام ہے؟ آیا یہ حقیقت ہے کہ ہم کائناتی روح کے سمندر میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح پانی میں مچھلیاں رہتی ہیں؟ ہاں، اس یونیورس کی ایک محیط روح ہے. محیط کا مطلب جس نے ساری کائنات کو اپنے اندر سمو لیا ہے، اور یہ ساری کائنات عالمگیر روح کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے. وہ اس طرح سے، اس کا نام نفس کلی ہے، اور جس کو انگلش میں یونیورسل ساؤل کہتے ہیں. اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہم اس یونیورسل ساؤل کے سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں جس طرح مچھلیاں سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں مگر زندہ ہیں اور تیرتی ہیں، خوشی سے ہیں. اسی طرح ہم سب اور ہر چیز یونیورسل ساؤل کے سمندر کے اندر ہے. پھر ہماری روح کا اس کے ساتھ رابطہ ہے. جب ہماری روح فنا ہو جائے گی اس عظیم روح میں، تو ہم اس عظیم روح کی آنکھ سے دیکھیں گے تو کیا کیا دیکھیں گے؟ ساری کائنات، آسمان، زمین، عرش، فرش، ہر چیز. اس لیے کہ وہ روح اس پوری کائنات پر محیط ہے، اور یہ ساری کائنات اس روح کے سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم اس روح کے اندر اس طرح سے تیرتے ہیں جس طرح مچھلیاں پانی میں. اگر ہماری آنکھ اسی زندگی میں کھل جائے یا مر چکنے کے بعد ہماری آنکھ کھل جائے، تو ہم اپنے آپ کو نفس کلی میں پائیں گے، یونیورسل سول میں پائیں گے، تو ساری کائنات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی. دوسرے مطلب میں اس کی تائید کے لیے دیکھیں، احذروا من فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. احتیاط رکھو، ڈرو مومن کی فراست سے، کیونکہ وہ خدا کے نور کے وسیلے سے دیکھتا ہے. یعنی مومن جو کامل ہو وہ خدا کے نور کو اپنی آنکھ قرار دے کر اسی سے وہ دیکھتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ ممکن ہے کہ کوئی مومن اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد خدا کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے، تو خدا کا نور کہاں نہیں پہنچتا ہے، اور خدا کے نور کی روشنی کس مقام تک رسا نہیں ہو سکتی ہے. یہی بات ہے کہ جزوی نفس جب کلی نفس میں فنا ہو جائے گی، یعنی چھوٹی روح جب بڑی روح میں فنا ہو جائے گی، تو وہ اپنے آپ کو بڑی روح پائے گی اور سب کچھ دیکھ سکے گی. سوال نمبر 9، فرمایا گیا ہے کہ روح کے بغیر کوئی چیز نہیں، تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پتھر اور مٹی جیسی چیزوں کی بھی ایک روح ہوا کرتی ہے، تو وہ کون سی روح ہے؟ فرمایا گیا ہے کا اشارہ یعنی حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ کے ایک ارشاد کی طرف ہے، جو اسلام میرے مرسوم کا مذہب، اس میں کسی مقام پر فرماتے ہیں کہ اسلام کے عقیدے کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر چیز میں روح ہے، کوئی چیز. سوال کیا، اسلام اور ایمان کی روح کون سی ہے اور وہ کہاں رہتی ہے؟ کیا وہ بولنے والی ہے یا خاموش ہے؟ جواب عرض ہے کہ اسلام اور ایمان کی روح بھی وہی ہے جو قرآن کی روح ہے، جس کا ابھی ذکر ہوا تھا. تو یہ اسلام اور ایمان کی روح کہیں یا قرآن کی روح کہیں، کیونکہ قرآن سے یہ اسلام اور ایمان باہر نہیں ہے. اس سینس میں اسلام اور ایمان کی روح سب سے پہلے حضرت میں نازل ہوئی تھی اور آپ میں یہ رہ رہی تھی، اور اس کے بعد قرآن کی روح کی حیثیت سے، اسلام اور ایمان کی روح کی حیثیت سے وہ روح آپ کے برحق جانشین میں یعنی امام میں منتقل ہوئی. لہذا اسلام اور ایمان کی روح امام میں ہے، وہ خاموش نہیں ہے، وہ بولنے والی ایک حقیقت ہے. سوال ہے، آدمی جب نیند کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی روح کہاں ہوتی ہے؟ وہ جو خواب دیکھتا ہے اس کا محل وقوع جسم ہے یا روح، یعنی عالم خواب کہاں ہے؟ آدمی جب نیند کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی روح اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کہیں نہیں جاتی. صرف ہوتا یہ ہے کہ روح کی گرفت جو حواس ہیں ان میں سے ڈھیلی ہو جاتی ہے. نیند اور سکون کی وجہ سے یہ جو سینسز ہیں، جو حواس ہیں، مثلا دیکھنا، سننا، سونگنا، بولنا، چکھنا، اور ظاہر و باطن میں جو اس قسم کے حواس ہیں، ان کے ساتھ روح کا جو رابطہ تھا اور جس طرح ان کو روح نے اپنی گرفت میں لی تھی، تو وہ کنیکشن جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، یا کہنا چاہیے کہ اس کی گرفت جو ہے ان حواس سے ڈھیلی ہو جاتی ہے، اور پھر روح اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اپنے اندر کی طرف. جس طرح ہم بیٹھتے ہیں کبھی تھنکنگ کے لیے یا سوچنے کے لیے یا میڈیٹیشن کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس وقت ہم بیداری ہی میں روح کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنے جسم اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح خواب میں روح جو ہے اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور یہ جو حواس ہے ان کو اپنی گرفت سے چھوڑ دیتی ہے. اور وہ جو خواب دیکھتا ہے انسان، وہ روح کے اندر ہے، تاہم ایک طرح سے جسم کے ساتھ روح کا رابطہ ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ روح جو ہے کہیں نہیں جاتی ہے، جسم کے ساتھ ہے اور تھوڑا سا رابطہ ہوتا ہے. اس کا ثبوت جسم کے ساتھ روح کے رابطہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ کبھی کبھار جب آدمی خواب میں ڈرتا ہے تو وہ تھوڑی سی آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ادھوری سی حرکت کرتا ہے، یا ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، یا بڑبڑاتا ہے، یا اس کو پسینہ آتا ہے. تو یہ ایک طرح سے رابطہ ہے. تو روح جسم کے ساتھ رہتی ہے، اور فرق یہ ہے کہ جو حواس سے ان کو اپنی گرفت سے چھوڑ دی، عالم خواب یعنی روح کے اندر ہیں، اور ایک طرح سے جسم کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے ایک حد تک. نمبر 12، ذکر عبادت سے روح پر جو پرمسرت اثرات کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، اور غفلت و نافرمانی کے نتائج کیوں ناخوشگوار گزرتے ہیں؟ یہ ہے کہ ذکر عبادت میں خدا کی یاد ہے، اور خدا کی یاد میں روشنی ہے، اور اس میں نور کی حرارت ہے، تو اس حرارت کی وجہ سے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذرات میں کچھ تجدید ہوتی ہے، اور روح ایک طرح سے رینیو ہوتی ہے، کچھ ذرات تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، اور روح کو اچھی امیدیں آتی ہیں، اور جو بے جا غم ہے اور شیطان کی طرف سے جو خوف ہے، جو اندیشہ ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، رحمان کی طرف سے جو اچھے خیالات ہیں، جو نیک امیدیں ہیں، وہ آتی ہیں. اور اسی طرح سے اس کنیکشن سے ذکر عبادت کے جو نتائج ہے وہ خوشگوار ہوتے ہیں. نافرمانی اس کے برعکس، نافرمانی اور غفلت، یعنی غفلت مانی بھول جانا خدا کو، اور نافرمانی مانی گناہ کرنا، تو اس کے نتائج اس کے برعکس ہیں. اس میں تاریکی آتی ہیں اور شیطان کو موقع ملتا ہے، تو روح کے کان میں وہ شیطان مایوسیاں اور افکار اور ایسی بری چیزیں جن سے روح کو غم ہوتا ہے، وہ
रूह के काम में शैतान बढ़ देता है और तारीकी आती है। इसलिए जो गफलत और नाफरमानी है उसमें इंसान का जो दिल है वो तंग हो जाता है, और इसके बरक्स जो जिक्र इबादत है उससे रूह में निखार पैदा हो जाता है और रोशनी पैदा होती है, इसलिए इंसान इबादत और जिक्र से खुश हो जाता है। 13 नंबर का, एक बच्चा जब शिकमी मादर में होता है तो उस वक्त इसमें रूह हिस्सी कहाँ से दाखिल होती है और यही रूह किसी शिरहार में किस राह से दाखिल होती है, और वो बच्चा जो अपनी माँ के पेट में होता है उसको गिजा जो मिलती है वो ब्लड है, खून है, माँ का खून, वो उस खून को मुंह की राह से नहीं चूसता है, नाक के रास्ते से उसको मुफसल आत्मे की खून जाता है, वो इस तरह नहीं जैसे कोई जानवर घास खाता है या इंसान गिजा खाता है जब आप वक्त वक्त से नहीं, जिस तरह किसी झाड़ को आप पानी देते हैं और वो मुसलसिल उसकी जड़ें जो हैं वो रुतूबत को और कुवत को झाड़ सूझता रहता है मुसलसल, इसी तरह मुसलसल नाक की राह से उस बच्चे को खून जाता है, उस खून के साथ रूह हैवानी या कि रूह हिस्सी इस बच्चे को जाती है। लेकिन ये बच्चा जब पैदा होता है तो वो रास्ता बंद होता है नाक का, फिर वो दूध पीने लगता है तो मुंह की राह से दूध के साथ रूह हैवानी उसको मिलती रहती है। ये सवाल है, गलत नहीं, हमारा बहुत टाइम लिया, बहरहाल इसको खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, आप बोर हुए होंगे लेकिन बोर नहीं होना चाहिए, मालूम के लिए आपसे बहुत ही पुरकुवत मजलिस है। 14 नंबर का सवाल है, इंसान में बोलने वाली रूह यानी रूह नाटका कहाँ से आती है, किस रास्ते से दाखिल होती है, आया ये एक दिन में मुकम्मल हो जाते हैं या बतदरीज, तो इसके लिए जवाब आज है कि इंसान में बोलने वाली रूह यानी घर के अफराद से आती है, ये जरूरी नहीं है कि सारी रूह माँ से या बाप से आती है, यानी घर में जो उससे बोलते हैं बच्चे से बातें करते हैं माँ है, बहन है, भाई है, बाप है और कोई है जो उससे बातें करते हैं, तो उन सब से वो रूह जो है रूह नाटका बोलने वाली जो है रूह कलेक्ट हो जाती है, और उसका रास्ता ये है, ये बोलने वाली रूह का रास्ता ये, वो हैवान का रास्ता ये, पहले नाक का रास्ता, तो बोलने वाली रूह जो है वो यहाँ पर माँ से जब बोलती है, बहन से, भाई से, बाप से जो भी बोले तो सबसे वो बोलने वाली रूह जो है वो कलेक्ट हो जाती है, एक दिन में नहीं उसको कम से कम 3 बरस या इससे ज़्यादा जितने अर्से में आप देखते हैं कि एक बच्चा बाप को मुकम्मल करता है, तो इतने अर्से में बोलने वाली रूह जो है अपने माहौल से और घर से वो कलेक्ट हो जाती है। यहाँ मुझे ये भी कहने दीजिए रूह खुशकी कहाँ से आती है, उसके लिए भी कोई रास्ता नहीं है, बस वो भी यहाँ से आती है पाक रूह, तो ये जो बोलने वाली रूह है वो किसके साथ आती है, वो बातों से, जो माँ बात करती है मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, माँ बाप, इस किस्म की जो बातें करते हैं इनमें बोलने वाली रूह उसको मिलती है, लेकिन रूह ये खुशकी जो है वो इल्म और हिकमत की बातों से, इमाम के इशादात से और आला दीनी बातों से, दिनान से और इमाम की मोहब्बत की बातों से रूह कुदसी यहाँ से आकर तकलीम पाती है। लेकिन एक खतरा ये रहता है कि अगर एक मोमिन गैरों की बातों को भी बेदरे सुनता है, बेतहाशा सुनता है, तो उसकी रूह कुदसी नामुकम्मल हो जाती है, वो खलल पैदा हो जाता है, किसी मोमिन को रूह कुदसी मुकम्मल कर लेनी है उसको थकत अपनी दीन की बातें हैं, दुनिया की तालीम तो अलग है कि दीन की बातें जो है अपनी ही, तो उस यहाँ से रूह आती है और उसके अंदर रूह खुशी एक हद तक मुकम्मल हो जाती है, और हर रूह बेतदरीज यानी आस्ता आस्ता कंप्लीट हो जाती है एक दिन में। यहाँ पर एक कमी यह रह गई है कि रूह खुशी जो है वो कानून से आती है, जिस तरह रूह इंसानी का मरकज जो है वो दिमाग है और इसी दिमाग में रूह खुशी का भी मरकज है, बिल्कुल इसी तरह से इंसानी रूह कानून से बातिन के साथ दाखिल होती है, बोलने वाली रूह। इसी तरह रूह ये खुद थी यानी पाक रूह या कि इमाम का नूर बातों में इन उनकी हिम्मत की बातों में इमाम का नूर आ सकता है। इस तरह से नहीं जो माजी रोशनी है जो बल्ब से या सूरज से आती है वो इस तरह से आती है, इस तरह से नहीं। दीन का नूर, इमाम का नूर, मारिफत का नूर या कि रूह कुदसी जो नूर है वो इन हिम्मत की बातों के वसीले से कानून की राह से आप में आ सकती है। इन्होंने कहा इंसान में 15 नंबर का है, तो इंसान में आला रूह पहले आती है या अदना रूह, अकल पहले आती है या रूह नातिका। जवाब है कि पहले अदना रूह आती है फिर आला रूह आती है, पहले नौकर आता है फिर बादशाह आता है। तो सबसे पहले गाछ वाली रूह आती है और उस पर बादशाह हिवान की रूह है वो आती है, उस पर बादशाह इंसान की रूह है वो आती है, उस पर बादशाह रूह पूछती है वो बाद में आती है। जिस तरह आम मिसाल में एक आम इंसान के अंदर अकल बाद में आती है, बोलने वाली रूह पहले आती है, अकल बरतर है इस वक्त बाद में आती है, तो दीन के अंदर जो आला चीज है वो बाद में आती है। देखिए दरअसल में क्या होता है, जब मौसमी बहार आता है तो पहले पत्ते आते हैं, पत्ते पैदा होते हैं, फिर कलियां, फिर फूल, फिर कीड़ियां और फिर उसके बाद कच्चा फल और फिर फल और आखिर में मार। तो दीन का सिलसिला भी ऐसा है। इसके बाद एक सवाल रहता है, अभी हम इस मज़मून को ख़त्म करने वाले हैं। नफ और रूह में हकीकत कोई फर्क नहीं है लेकिन आम तौर पर फर्क है और लोग रूह कहना पसंद करते हैं, नफ कहना पसंद नहीं करते हैं। वजह इसलिए है कि नफ जो है अम्मारा के साथ इस्तेमाल हुआ है, नफ अम्मारा और हमेशा यानी बुराई के साथ और बुरी चीज़ों की तरफ हुक्म करने वाला नफ। तो लिहाजा इससे बचने के लिए नफ की जगह पर और रूह कहा करते हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो नफ भी अच्छे सेंस में कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है और नफ के एक आम इंसान में नफ के तीन स्टेज हैं। नफ अम्मारा यानी बार बार बुराई की तरफ हुक्म करने वाला नफ, नफ लवामा अपनी गलतियों पर नादिम होने वाला, नदामत उठाने वाला, सेल्फ ब्लेमिंग यानी खुद को ब्लेम करने वाला नफ, ये दूसरा दर्जा है। नफ मुतमाइना बस जो नफ सुकून में है और दीन की हकीकत को पाया है वो नफ। कुरान के ऐसे मकाम ऐसा मकाम भी है जिसमें खुदा फरमाता है कि या ये तो हम नफ्सुल मुतमाइन्ना जिसको इत्मीनान मिला है खुदा की तरफ से, अब खुदा की तरफ लौट जा राजी हो के और खुदा तुझसे राजी है और तू खुदा से राजी है। इससे पता चलता है कि नफ जो है यानी यकसर बुरा नहीं है और नफ के जरिए कुरान के अंदर इंसान के इन तीन मकाम के अलावा दो और मकाम हैं जो आला है। एक जगह पर खुदा ने अपने नफ्स के बारे में कहा है यानी रूह के सेंस में, और एक मकाम पर नफ्स वाहिदा जो नफ्सुली की तरफ इशारा है। तो इससे पता चलता है कि नफ्स का जो लफ्ज कतन यानी बुरा नहीं है लेकिन इसके इसका मौका ही इस्तेमाल है। लिहाजा कुरान में तीन मकाम पर नफ्स के लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है, पांच मकाम पर। तीन मकाम जो है वो इंसान के बारे में है और दो मकाम जो है इससे आला है, तो इसलिए ये नफ्स की तशरीह है। और उसका भी है, आप में से कोई किसी मरीज को यानी ब्लड जो है वो ग्रांट करता है, हत्या देता है, तो उस वक्त आपके अंदर जो मुख्तलिफ रूहें हैं उनमें से कौन कौन सी रूहें जाती हैं और कौन सी रूहें जो नहीं जा सकती हैं। तो आपके अंदर जो इंसानी रूह है वो नहीं जा सकती है क्योंकि वो यानी माइंड के साथ ब्रेन के साथ वाबस्ता है इसका मरकज, लिहाजा वो नहीं जा सकती है और इसमें सिर्फ रूह नबाती और रूह हैवानी जा सकती है, ये दो रूहें जाती हैं, तो इनके जाने में कोई हर्ज नहीं। इस यानी शरीयत के बारे में कुछ सवाल पैदा नहीं हो सकता है कि आप में से जिस नफ या जिस रूह के साथ किताब है वो तो आपके पास है, और आप में से अगर घास वाली रूह जाती है तो कोई हार्ज नहीं, और हैवान वाली रूह जाती है उसमें से कुछ जर्रे जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए खून के देने से या किसी आंख के देने से या दिल की तब्दीली से कोई मसला पैदा नहीं होता है। इसी के साथ ये हमारे सवाल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें और ज़्यादा तशरीहात हैं, लेकिन हम एक ही मजमून को ज़्यादा देर तक चलाना पसंद नहीं करते हैं। शुक्रिया कि आपने तवज्जो से सुना। तो इस सिलसिले में अगर कुछ कहना है तो मैं किसी मौके पर कहूँगा, लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इल्म के हक अदा करने पर कुछ इसरार करूँ या उसके पे जोर दूँ, बल्कि इस्माइली उसूल के मुताबिक ये है कि इल्म का हकीकी सरचश्मा इमाम है, और इसमें हमारा फर्ज ये होता है कि कुछ इल्म की बातें करके आखिर में इल्म के दावे से दस्तबरदार हो जाएं और ये इकरार करें कि इल्म हमारा नहीं है, इल्म इमाम का है, और हमारा उसूल हमको ये बताता है। तो बाकी जो कुछ कहा गया वो तो अदब की बात है, और इमाम जैसा चाहे वो फरमा सकते हैं, इमाम अपने साथ जो उसके खादिम हैं उनमें से किसी को कोई चीज़ मंसूख करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम इस हद में नहीं हैं कि किसी चीज़ का दावा करें, क्योंकि हमारा उसूल हमारा दीन ये बताता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। जो सरचश्मा जहाँ से आता है तो वो सरचश्मा वहीं का है, यानी इल्म सही मानों में इमाम का है, और हकीकी सरचश्मा भी वही है, लेकिन हम दरमियान में इस चीज़ को देखें, तजिया करें और सही तौर से देखें तो ये चीज़ हमारी नहीं। और इसी के साथ में बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त हुआ है, और फिर आगे चल कर देखेंगे जो कुछ मुनासिब हो।